शांति, ओम शांति। आज प्यारे प्यारे बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि जैसे लौकिक में गाते हैं, तेरे भाने सर्व का भला। बाबा ने कहा, तुम बच्चे बाप की श्रीमत पर चलते हो, अपना कल्याण करते हो, 84 जन्म पूरे होते हैं, औरों के भी आपके साथ कल्याण हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे 84 जन्म पूरे होते ही उनका कल्याण हो जाता है। फिर दूसरी बात बाबा ने कही, तुम बच्चे सच्चे सच्चे वैष्णव हो। दुनिया में वैष्णव समझते हैं भोजन के आधार से, शरीर के आधार से, लेकिन बाबा ने कहा तुम सच्चे वैष्णव हो। एक तो तुम्हारा खान पान भी शुद्ध है, दूसरा तुम बच्चे पवित्र रहते हो। तो उसके लिए बाबा ने कहा, फिर तीसरी बात बाबा ने कहा कि याद से ही तुम ऊंच पद पा सकते हो। अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 2 अप्रैल 2025। मुरली का मुख्य हेडिंग, मीठी बच्ची इस पतित पुरानी दुनिया से तुम्हारा बेहद का वैराग्य चाहिए। मीठी बच्ची इस पतित पुरानी दुनिया से तुम्हारा बेहद का वैराग्य चाहिए, क्योंकि तुम्हें पावन बनना है। तुम्हारी चढ़ती कला से सबका भला होता है। आज का प्रश्न, कहा जाता है आत्मा अपना ही शत्रु, अपने ही मित्र है, सच्ची मित्रता क्या है? लौकिक में भी कहते हैं ना, आत्मा अपना ही शत्रु, अपने ही मित्र है। तो बाबा कहते हैं सच्ची मित्रता क्या है? इसका उत्तर है, एक बाप की श्रीमत पर सदा चलते रहना, यही सच्ची मित्रता है। सच्ची मित्रता है एक बाप को याद कर पावन बनना। सच्ची मित्रता क्या है? एक बाप की श्रीमत पर चलते रहना, दूसरा एक बाप को याद कर पावन बनना, और तीसरा है बाप से पूरा वर्षा लेना। ये मित्रता करने की युक्ति बाप ही बतलाते हैं। संगम युग पर भी आत्मा अपना मित्र बनती है। आज का गीत है, तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खा के, और हीरा जन्म अमूल्य कोड़ी तुल्ले बनाया है। तो बाल भक्ति में गाते रहते ना, तो बाबा कहते हैं ओम शांति। यूं तो ये गीत है भक्ति मार्ग के, सारी दुनिया में जो गीत गाते हैं वह शास्त्र पढ़ते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, ये सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग किसको कहा जाता है और भक्ति मार्ग किसको कहा जाता है, ये भी तुम बच्चे समझते हो। वेद शास्त्र उपनिषद आदि ये सब है भक्ति मार्ग के, आधा कल्प की भक्ति चलते। वेद शास्त्र उपनिषद आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, जो आधा कल्प भक्ति चलती है, और आधा कल्प फिर ज्ञान की प्रारब्ध चलती है। भक्ति करते करते उतरना ही है, 84 पुनर्जन्म लेते लेते उतरना ही है, फिर एक जन्म में तुम्हारी चढ़ती कला होती। 84 जन्मों में नीचे उतरते जाते, फिर संगम युग के अंदर बाबा कहते एक जन्म में तुम्हारी चढ़ती कला हो जाती है, फिर एक जन्म में तुम्हारी चढ़ती कला होती है। इसको कहा जाता है ज्ञान मार्ग। ज्ञान के लिए गाया हुआ है कौन सी बात? सेकंड में जीवन मुक्ति। ज्ञान के लिए गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। रावण राज्य जो द्वापर से चला आता है वह खत्म हो, फिर राम राज्य स्थापन होता है। ड्रामा में जब तुम्हारे, बहुत बड़े राज की बात बता रहे हैं, ड्रामा में जब तुम्हारे 84 जन्म पूरे होते हैं तब चढ़ती कला से सबका भला होता है। कितना बड़ा गहरा कनेक्शन है। ब्राह्मण 84 जन्म लेते हैं, उनके पूरे होने लगते हैं तो परिवर्तन होता है, साथ साथ सबका कल्याण हो जाता है। तो बाबा बताते हैं एक सेकंड में जीवन मुक्ति। रावण राज्य द्वापर से चला आ रहा है, वह खत्म हो, फिर राम राज्य स्थापन होता है। ड्रामा में जब तुम्हारे 84 जन्म पूरे होते हैं तब चढ़ती कला से सबका भला होता है। ये अक्षर कहाँ न कहाँ किसी शास्त्रों में है, चढ़ती कला सर्व का भला। शास्त्रों में है, भक्ति मार्ग में भी कहते चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो किसके भाने भला होता है? बाबा कहते तुम ब्राह्मणों के 84 जन्म पूरे होते ही सबका कल्याण हो जाता है। तो ये बातें शास्त्रों में है। सर्व की सदगति करने वाला, सर्व का सदगति करने वाला एक ही बाप है। सन्यासी उदासी तो अनेक प्रकार के हैं, बहुत मत मतांतर है। जैसे शास्त्रों में लिखा है कि कल्प की आयु लाखों वर्ष है, अब शंकराचार्य की मत निकली 10,000 वर्ष पहले। शास्त्रों में बताते शंकराचार्य ने 10,000 वर्ष पहले ज्ञान दिया था। फिर कोई कहते इतने वर्ष, तो बाबा कहते कितनी अलग अलग प्रकार की मतें हैं। जैसे शंकराचार्य के लिए कहते हैं कि 10,000 वर्ष कितना फर्क हो जाता है, कितना फर्क हो जाता है। कोई फिर कहेगा इतने 1,000 वर्ष, कलयुग में 1,000 मनुष्य 1,000 मत, जितने मनुष्य हर एक के अलग अलग मत हैं। कलयुग में अनेक मनुष्य अनेक मतें अनेक धर्म, सतयुग में होता है एक धर्म। ये बाप बैठ तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं, इसे सुनाने में भी कितना टाइम लगता है। बाबा जो ज्ञान देते हैं, बाबा कहते हैं इसे सुनाने में कितना टाइम लगता है। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं तो कितना टाइम लगता होगा बताइए? एक सेकंड ना, लेकिन उसको अभ्यास करने में काफी टाइम लगता है। तो बाबा कहते हैं बाप बैठ तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं, इसे सुनाने में कितना टाइम लगता है। सुनाते ही रहते हैं, ऐसे नहीं कह सकते पहले ये क्यों नहीं सब सुनाया। अभी जैसे बाबा शुरू में बच्चों को ज्ञान दिया तो बच्चे बुद्धि थी, वो छोटी बुद्धि थी। बाबा ने उनको सिर्फ यही कहा आत्मा आत्मा पक्का करो। फिर धीरे धीरे सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया, फिर धीरे धीरे आत्मा के रोल का ज्ञान दिया। कई बच्चे कहते थे बाबा ये सब पहले क्यों नहीं बताया, तो बाबा भी उसका रहस्य बता रहे। स्कूल में छोटा बच्चा पढ़ने के लिए जाता है और उसको कहो कि पूरी पढ़ाई सुना दो तो उसकी बुद्धि में बैठेगा? उसको तो पहले क ख बताएंगे, बाद में धीरे धीरे पक्का करेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कह सकते कि पहले ये सब क्यों नहीं सुनाया। स्कूल में भी तो पढ़ाई नंबर वार होती है, छोटे बच्चों के ऑर्गन्स भी छोटे होते हैं तो उनको थोड़ा सिखलाते। छोटे बच्चों को क्या पढ़ाई होती, स्कूल में जाते ना LKG के होते हैं छोटे छोटे, तो उनको खेल कूद कराते रहते हैं, उनकी पढ़ाई तो कुछ होती नहीं। जैसे वो थोड़ा बड़ा होता है तब पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं छोटे बच्चों को आर्मी छोटे होते हैं तो उनको थोड़ा सिखलाते हैं, फिर जैसे जैसे ऑर्गन्स बड़े होते जाएंगे बुद्धि का ताला खुलता जाएगा, पढ़ाई धारण करते जाएंगे। इसमें भी छोटे बच्चों की बुद्धि में कुछ धारण हो न सके। बड़ा होता है तो फिर बैरिस्टर जज आदि बनते, पैदा हो तो थोड़ी बनेगा, पढ़ाई करते करते नहीं बनता, जब पढ़ाई पूरी होती है तब जाकर के बैरिस्टर जज बनता है। तो बाबा कहते जब बड़ा होता है फिर बैरिस्टर जज आदि बनते। इसमें भी ऐसे है, कोई की बुद्धि में धारणा अच्छी होती है। बाप कहते हैं मैं आया ही हूँ पतित से पावन बनाने, तो अब पतित दुनिया से वैराग्य होना चाहिए। भगवान को बुलाया पतित से पावन बनाओ, तो बाबा कहते मैं अभी आया हूँ तो पतित दुनिया से क्या होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए। अब पतित दुनिया से वैराग्य होना चाहिए, आत्मा पावन बने तो फिर पतित दुनिया में रह न सके। पतित दुनिया में कलयुग की दुनिया में तो कहां से मच्छर आ जाएंगे, कहां से कुछ न कुछ आ ही जाता है। तो बाबा कहते हैं छोटे बच्चों को ऑर्गन्स छोटे होते हैं तो उनको थोड़ा सिखलाते हैं, फिर जैसे जैसे ऑर्गन्स बड़े होते जाएंगे बुद्धि का ताला खुलता जाएगा, पढ़ाई धारण करते जाएंगे। छोटे बच्चों की बुद्धि में धारणा तो हो न सके, बड़ा होता है फिर बैरिस्टर जज आदि बनते हैं। इसमें भी ऐसे हैं, कोई की बुद्धि में धारणा अच्छी होती है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ पतित से पावन बनाने, तो अब पतित दुनिया से वैराग्य होना चाहिए, आत्मा पावन बने तो फिर पतित दुनिया में रह न सके। पतित दुनिया में आत्मा भी पतित है, मनुष्य भी पतित है, पावन दुनिया में मनुष्य भी पावन है। ये सारा ज्ञान बुद्धि से समझने का है। इस समय सभी की बाप से है विपरीत बुद्धि। दुनिया में लोग बाबा को नहीं जानते हैं तो बाबा को कहना पड़ता है इस समय सभी की है बाप से विपरीत बुद्धि। तुम बच्चे तो बाप को याद करते हो, अंदर में क्या है बाप के लिए प्यार है। बच्चों का बाबा के लिए कितना प्यार, बाबा हमेशा अव्यक्त मुरली में कहते हैं बताते हैं कि प्यार के सब्जेक्ट में सब बच्चे पास है, उसमें कोई नंबर कम है लेकिन प्यार के सब्जेक्ट में सब पास है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम अंदर में बाप के लिए प्यार है, आत्मा में बाप के लिए प्यार भी है, रिगार्ड भी है, क्योंकि बाप को जानते हैं। यहाँ तुम सन्मुख हो, शिव बाबा से सुन रहे हो, वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर है। गीता ज्ञान दाता परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव परमात्मा वाच्य। बाबा हमेशा कहते थे चित्र पर लिखो गीता ज्ञान दाता त्रिमूर्ति शिव परमात्मा वाच्य, त्रिमूर्ति अक्षर जरूर डालना। बाबा हमेशा चित्र बनवाते थे तो बाबा कहते त्रिमूर्ति अक्षर जरूर डालना, क्योंकि त्रिमूर्ति का ही तो गायन है ना ब्रह्मा द्वारा। तो बाबा ये कहते हैं कि जैसे दुनिया वाले त्रिमूर्ति कहते हैं लेकिन समझते नहीं है, तो बाबा कहते त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही ज्ञान सुनाएंगे। ब्रह्मा द्वारा स्थापना है तो ज्ञान भी ब्रह्मा द्वारा सुनाएंगे। श्री कृष्ण को तो ऐसे नहीं कहेंगे शिव भगवानो वाच्य, प्रेरणा से तो कुछ होता ही नहीं, न उनमें शिव बाबा की प्रवेशता हो सकती। श्री कृष्ण में थोड़ी शिव बाबा आएगा, वो तो छोटा बच्चा है, तो बाबा कहते उसमें प्रवेशता हो नहीं सकती है। श्री कृष्ण तो ऐसे नहीं कहेंगे शिव भगवानो वाच्य, प्रेरणा से तो कुछ होता नहीं, न उनमें शिव बाबा की प्रवेशता हो सकती है। शिव बाबा तो पराये देश में आते हैं, सतयुग में तो श्री कृष्ण का देश है। अब अंतर, सतयुग है श्री कृष्ण का देश और शिव बाबा का देश कौन सा है, पराया देश, अपना ही देश नहीं है। भारत में आते लेकिन वो भी बाबा का नहीं है। तो बाबा कहते हैं श्री बाबा तो पराये देश में आते हैं, सत्यु में श्री कृष्ण का देश है, तो दोनों की महिमा अलग अलग है। मुख्य बात ये है सत्यु में गीता तो कोई पढ़ते नहीं, गीता शास्त्र है या नहीं है, कुछ भक्ति है वो तो कुछ होता ही नहीं है। तो बाबा कहते सचिव में गीता तो कोई पढ़ते नहीं है, भक्ति मार्ग में तो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हैं, ज्ञान मार्ग में तो वह हो न सके। बाबा आकर के गीता ज्ञान सुनाते, ऐसे नहीं कि गीता पढ़ना शुरू करेंगे उसका रहस्य बताते हैं। ज्ञान मार्ग में तो ये हो न सके, भक्ति मार्ग में ज्ञान की बातें होती नहीं। अब रचयिता बाप ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। मनुष्य तो रचयिता हो न सके, मनुष्य कह न सके कि मैं रचयिता, भले वो अपने परिवार का रचयिता है लेकिन सारी सृष्टि का तो रचयिता नहीं है ना। तो बाबा कहते मनुष्य ये कह न सके कि मैं रचयिता हूँ। बाप खुद कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, मैं ज्ञान का सागर प्रेम का सागर सर्व का सदगति दाता हूँ, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। तो ये पूरा कॉन्ट्रास्ट लिखना चाहिए। शुरू शुरू में बाबा ने चित्र बनवाए थे, उसके अंदर एक चित्र में श्री बाबा की महिमा क्या है और श्री कृष्ण की महिमा क्या है, तो दोनों लिखो। फिर जब वो आते पढ़ते हैं तो समझ आते थे कि दोनों की महिमा में कितना अंतर है। तो बाबा कहते हैं तो ये पूरा कॉन्ट्रास्ट लिखना चाहिए, जो मनुष्य पढ़ने से झट समझ जाए कि गीता का ज्ञान दाता श्री कृष्ण नहीं है। इस बात को स्वीकार किया, बाबा ने एक बहुत बड़े टाइटल दे दिया, इस बात को उन्होंने स्वीकार किया तो समझो कि तुमने जीत पहन ली। हमें याद आता जब शुरू शुरू में प्रदर्शनी होती थी, इस चित्र के ऊपर उन लोगों से हम रिमार्क्स लिखवाते थे, ओपिनियन लिखवाते थे, और वो ओपिनियन में लिखते थे कि हमने समझा है कि गीता का ज्ञान दाता कौन है, शिव परमात्मा है। तो बाबा ने कहा अगर सब समझ जाएंगे तो आप इस बात में तो समझ लो कि आपने जीत पहन ली, और अभी तो वो सब समझते भी हैं, नजदीक भी आ रहे हैं और मान भी रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इस बात को स्वीकार किया तो ये समझो कि तुमने जीत पहनी। मनुष्य श्री कृष्ण के पिछाड़े कितना हैरान होते हैं, मनुष्य श्री कृष्ण के पिछाड़ी कितना हैरान होते हैं, जैसे शिव के भगत शिव पर गला काट देने के लिए तैयार हो जाते। उस समय बनारस के अंदर एक कुआं बना हुआ था, बाबा हमेशा बताते भी हैं कि वो जो शिव के भगत हैं वो जाते हैं बलि चढ़ते एकदम गला काट देते हैं, शिव की बहुत भक्ति करते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे शिव के भगत शिव पर गला काटने के लिए तैयार हो जाते, बस हमको तो शिव के पास जाना है। वैसे वह समझते हैं कि श्री कृष्ण के पास जाना है, परंतु श्री कृष्ण के पास कोई जा न सके। श्री कृष्ण के पास बलि चढ़ने की बात है, बलि हमेशा चढ़ते हैं शिव बाबा के ऊपर, लेकिन श्री कृष्ण को याद करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन उसके ऊपर बलि नहीं चढ़ते। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण के पास बलि चढ़ने की बात नहीं होती है, और किस पे बलि चढ़ाते, देवियों पर बलि चढ़ाते, देवताओं पर नहीं चढ़ाते, देवताओं के आगे कभी भी बलि नहीं चढ़ाते, देवियों पर ही बलि चढ़ाते हैं और शिव के ऊपर ही बलि चढ़ाते हैं, देवियों पर भी बलि चढ़ाते हैं, देवताओं पर कभी बलि नहीं चढ़ाएंगे। कितना अंतर है, देवियों ने त्याग तपस्या बहुत किया, देवताएं भी करते हैं, सभी करते हैं, लेकिन देवियों की महिमा ज्यादा है, तो देवियों देवताओं पर कभी बलि नहीं चढ़ेगी। तुम देवियां हो ना, अब भाई या बहने सब देवियां हैं, तुम देवियां हो ना, तुम शिव बाबा के बने हो तो शिव बाबा पर बलि चढ़ते हो। सब चढ़े है ना शिव बाबा पर बलि, कहीं ऐसा तो नहीं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ऐसा भी होता है ना, तो बलि पूरा नहीं चढ़ते हैं, कभी बुद्धि बाहरी दुनिया में जाती है, कभी इधर जाती है, कभी कुछ बोलेंगे, कहीं ज्ञान लेकर के भी कुछ ना कुछ बोलते हैं। तो बाबा कहते पक्का निश्चय बुद्धि होकर चलो, बाबा बाहर की दुनिया से कितना बच्चों को सेफ्टी में रखते हैं। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं कि तुम बने हो, तुम तो शिव बाबा के बने हो और शिव बाबा पर ही बलि चढ़ते हो। शास्त्रों में तो हिंसक बातें लिख दी हैं, तुम तो शिव बाबा के बच्चे हो, तन मन धन बलि चढ़ाते हो, और कोई बात नहीं है, इसलिए शिव और देवियों पर ही बलि चढ़ाते हैं। अब गवर्नमेंट ने शिव काशी पर बलि चढ़ाना बंद कर दिया। जब ऐसा चल रहा था तो ब्रिटिश रूल के अंदर ही ये उस समय बंद करा दिया था, और अभी भी वो कुआं तो है लेकिन बंद ही है, तो ये बंद करा दिया था क्योंकि ये तो ऐसा हो जाता है, सुसाइड की तरह से हो जाता है। तो बाबा क्या कहते हैं, अब गवर्नमेंट ने शिव काशी पर बलि चढ़ाना बंद कर दिया है, अभी वह तलवार ही नहीं है। जो बताते हैं ना, कहीं ने देखा होगा एक कुएं के अंदर बहुत बड़ी तलवार होती थी, और बलि चढ़ने वाले भी ऐसा करते थे बिल्कुल झाटको उस तलवार के ऊपर उनका गला लगे, अगर नहीं लगेगा तो नीचे जाके भटकते रहेंगे। तो बाबा की एक तलवार थी वो भी नहीं है, अभी वह तलवार भी नहीं है। भक्ति मार्ग में जो आप घात करते हैं वह जैसे कि, अब सुनो बहुत गहरी बात, भक्ति मार्ग में जो आप घात करते हैं ये भी जैसे अपने साथ शत्रुता करने का उपाय भक्ति मार्ग में करते हैं, दुनिया में करते हैं। अब बाबा भी क्या कहते हैं, ऐसे कोई भी करता है तो कितना बड़ा बोझ पाप हो जाता है, और संकल्प में भी ये बात नहीं आनी चाहिए। संकल्प में आया तो समझो ये भी अंदर के अंदर जमा होता जाता है, खाता जमा होता जाता है। तो बाबा की चीज सदा खुशी में रहो, हम बाबा के बने हैं, बाबा ने हमें क्या नहीं दिया है, बाबा हमें भरपूर कर रहे हैं, बाबा हमें विश्व का मालिक बना रहे। और कईयों की आदत होती है ऊपर से बोलने के, हम ऐसे करेंगे तो ऐसे करेंगे, अपना ही बोझ बढ़ाते जाते हैं। तो बाबा इस बात पर बहुत ध्यान खिंचवाते थे कि सबको अपने अंदर संकल्पों को बहुत श्रेष्ठ बनाना है। तो इसलिए बाबा कहते देखो कितनी अच्छी बात की है, भक्ति मार्ग में जो आप घात करते हैं ये भी जैसे अपने साथ शत्रुता करने का उपाय। संकल्प आया मीन्स अपने साथ ही शत्रुता है, सबके लिए ये बात है। तो बाबा कहते हैं मित्रता करने का एक ही उपाय है, जो बाप बतलाते हैं कि पावन बनकर बाप से पूरा वर्षा लो, एक बाप की श्रीमत पर चलते रहो, यही मित्रता है। बाबा के साथ मित्रता क्या है, एक बाप की श्रीमत पर चलते रहो। कहते हैं ना जीव आत्मा अपना ही शत्रु है और अपना ही मित्र है। दुनिया में क्या कहते, मनुष्य अपना ही शत्रु है अपना मित्र है, और बाबा कहते जीव आत्मा अपना ही शत्रु है। फिर बाप आकर ज्ञान देते हैं तो जीव आत्मा अपना मित्र बन जाती। कैसे बन जाती, क्योंकि अपना कल्याण करते हैं, अपने विकर्मों का बोझा उतारते हैं। तो बाप आकर ज्ञान देते हैं तो जीव आत्मा मित्र बनती है, आत्मा पवित्र बन बाप से वर्षा लेती है। संगम युग पर हर एक आत्मा को बाबा आकर क्या करते हैं, संगम युग पर हर एक आत्मा को बाप आकर के अपना मित्र बनाते। कितनी बड़ी बात है, बाबा हमको फ्रेंड बनाते हैं, बाबा की फ्रेंड है, इससे बढ़ के और क्या चाहिए। तो बाबा कहते संगम युग पर हर एक आत्मा को बाप आकर मित्र बनाते, आत्मा अपना मित्र बनती है, श्रीमत मिलती है तो समझती है कि हम बाप की श्रीमत पर चलेंगे। अपनी मत पर तो आधा कल्प चले हो, बाबा कहते आधा कल्प अपने मत पर चले हो और एक ही जन्म के अंदर बाबा के श्री मत पर चलो, आधा कल्प तो अपने मत पर चले। अब श्री मत पर सदगति को पाना है, इसमें अपने मत चल ना सके। बाबा सीधा सीधा बताते हैं, कई कहेंगे नहीं ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए। कई बार कई लोग आते थे बाबा के टाइम पर, बाबा को कई प्रकार की राय देते थे। बाबा कहते अच्छा बच्चे राय तो दिया, ठीक है शिव बाबा को बता देंगे, शिव बाबा ही मास्टर है, वही जानता वही राय देने वाला। तो बाबा कहते कोई की अपनी मन मत जो है ना वो इसमें नहीं चल सकती है। तो बाबा कहते इसमें अपने मत चल ना सके, बाप तो सिर्फ मत देते हैं, तुम तो देवता बनने आए हो। बाबा और मतों को क्या करेंगे, तुम किस लिए आए हो, तुम तो देवता बनने आए हो, यहाँ अच्छे कर्म करेंगे तो दूसरे जन्म में भी अच्छा फल मिलेगा, वह भी अमर लोक में। ये तो है ही मृत्यु लोक, ये राज तुम बच्चे ही जानते। हम अच्छे कर्म करेंगे अमर लोक में हमको अच्छा पद मिलेगा। बाबा कहते ये जो गहरा राज है तुम बच्चे ही जानते हो। सो भी नंबर वार, कोई की बुद्धि में अच्छी धारणा होती है, कोई धारणा कर नहीं सकते तो इसमें टीचर क्या कर सके। अब स्कूल में बच्चा पढ़ता नहीं है, टीचर क्या करेगा, उसको पढ़ाएगा ना कि पढ़ो। अब धारणा होती नहीं तो बाबा कहते बाबा भी क्या कर सकेगा। कोई की बुद्धि में धारणा अच्छी होती है, कोई की बुद्धि में धारणा नहीं होती, इसमें टीचर क्या कर सकते हैं। टीचर से कृपा व आशीर्वाद मांगेंगे क्या, टीचर को कहेंगे मैं पढ़ता नहीं है तो मेरे को पास कर देना, वो क्या पास करेंगे, कृपा व आशीर्वाद मांगेंगे क्या। टीचर तो पढ़ाकर अपने घर चले जाते हैं, स्कूल में पहले पहले खुदा की बंदगी आकर करते। स्कूलों में होता है ना, आते पहले आते बच्चे खड़े होते हैं तो प्रार्थना करते हैं, परमात्मा के लिए प्रार्थना करते, कोई ना कोई प्रार्थना सिखाते हैं, करते हैं, गाते हैं। तो बाबा ने कहा स्कूल में आकर के बच्चे खुदा की बंदगी करते हैं, हे खुदा हमको पास कराना, तो फिर हम क्या करेंगे। कई बच्चे ऐसे होते थे भगवान को प्रार्थना करते हैं, आप हमें पास कराएंगे तो हम भोग लगाएंगे, हम ये करेंगे, ईश्वरार्थ ये करेंगे। पास तो खुद होना है ना, तो बाबा कहते हैं हे खुदा हमको पास कराना तो फिर हम भोग लगाएंगे। टीचर को कभी नहीं कहेंगे कि हमको आशीर्वाद करो। इस समय परमात्मा हमारा बाप भी है टीचर भी है, बाप की आशीर्वाद तो अंडरस्टूड। बाबा से भी आशीर्वाद मिलती है, मांगने नहीं है, बाबा के तो अंडरस्टूड है। बच्चे बाप बच्चे को चाहते हैं और बच्चा आए तो उसको धन दो। अब देखो कितना बड़ा गहरा राज कि बाप की आशीर्वाद है अंडरस्टूड है, बच्चा चाहता है घर, बाप चाहता है बच्चा घर में आए तो मेरी सारी प्रॉपर्टी का मालिक बने, तो आशीर्वाद तो हो ही गई ना। तो बाबा कहते हैं टीचर को कभी नहीं कहेंगे कि आशीर्वाद करो। इस समय परमात्मा हमारा बाप भी है टीचर भी है, बाप की आशीर्वाद तो अंडरस्टूड है ही। बाप बच्चे को चाहते हैं कि बच्चा आए तो मैं उसको धन दूं, तो ये आशीर्वाद हुई ना, ये भी एक कायदा है। बच्चे को बाप से वर्षा मिलता है, अब तो तमो प्रधान होते जाते हैं, जैसा बाप वैसे बच्चे। इतने तमो प्रधान है, बाप बच्चे को प्रॉपर्टी नहीं देना चाहता और बच्चे उस प्रॉपर्टी को छीनने के लिए क्या करते हैं, लड़ाई झगड़ा मारा मारी पता नहीं सारा दिन करते रहेंगे। तो बाबा को कहना पड़ता है बाप भी वैसा तो बच्चे भी वैसे। तो बाबा कहते हैं जैसा बाप वैसे बच्चे, दिन प्रतिदिन हर चीज तमो प्रधान होती जाती है। तत्व भी चीज तो क्या, तत्व भी तमो प्रधान होते जाते हैं। देखते ना क्या हाल हो रहा है, कहाँ अर्थक्वेक है, कहाँ पानी पानी है, कहाँ सूखा है, कहाँ आंधी तूफान है। तो बाबा कहते हैं सब क्या है, तत्व भी तमो प्रधान होते जाते हैं। ये है ही दुख धाम, 40,000 वर्ष अभी और हो तो आयु का क्या हाल हो जाए। सौ साल में ये हालत हो जाती है, तो बाबा कहते अगर 40,000 वर्ष और हो तो आयु का क्या हाल हो जाएगा। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही तमो प्रधान हो गई है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बाप के साथ योग रखने से क्या प्राप्ति हुई है? अब तुम बच्चों की बुद्धि में बाप के साथ योग रखने से बाबा कहते रोशनी की प्राप्ति, नॉलेज मिली, प्रकाशता मिला, अंडरस्टैंडिंग आ गई। तो बाबा कहते हैं अगर तुम बच्चों की बुद्धि में बाप के साथ योग रखने से रोशनी आ गई है। बाप कहती हैं जितना याद में रहेंगे उतना लाइट बढ़ती जाए, अंदर से शक्ति मिलती जाएगी, पवित्रता बढ़ती जाएगी। याद से आत्मा पवित्र बनती है, लाइट बढ़ती जाती है। याद नहीं करेंगे तो लाइट भी बंद, जैसे यहाँ कनेक्शन ठीक नहीं होगा तो लाइट पीछे चल रही है लेकिन लाइट का नहीं आ रही है क्योंकि कनेक्शन ठीक नहीं है। तो बाबा कहते अगर याद नहीं करेंगे तो लाइट भी बंद, याद नहीं करेंगे तो लाइट नहीं मिलेगी, याद से लाइट वृद्धि को पाएगी। याद नहीं किया और विक्रम कर लिया तो लाइट कम हो जाएगी। तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान बनने का, ये बड़ी समझने की बातें हैं। याद से ही तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाएगी। तुम लिख भी सकते हो, ये रचयिता और रचना का ज्ञान श्री कृष्ण दे नहीं सकते, वह तो है प्रारब्ध, ये भी लिख देना चाहिए। बाबा हमेशा कहते हर बात जो सच्चाई है उसको सीधा लिखो, गोलमोल नहीं करो। तो बाबा कहते लिख दो, उनको बताओ ये प्रारब्ध है। तो बाबा कहते वह तो है प्रारब्ध, ये भी लिख देना चाहिए। 84वें जन्म के अंतिम जन्म में श्री कृष्ण की आत्मा फिर से ज्ञान ले रही है, फिर फर्स्ट नंबर में जाते हैं। बाप ने अंतिम जन्म में बाप ने समझाया है सतयुग में शुरू में 9 लाख ही होंगे, फिर उससे वृद्धि भी होगी ना, दास दासियां भी होंगे ना। अब शुरू में श्री सतयुग के स्टार्टिंग में श्री कृष्ण है, विश्व महाराजा महारानियां हैं, रॉयल फैमिली है, तो सबके साथ कौन होंगे, दास दासियां भी होंगे, ऐसा नहीं कि वो अकेले होंगे। इसलिए बाबा बता रहे हैं वहां दास दासियां भी तो होंगे ना, जो पूरे 84 जन्म ले, श्री कृष्ण 84 जन्म लेगा, उनके साथी 84 जन्म, रॉयल फैमिली और दास दासियां भी 84 जन्म लेंगे क्योंकि उनको तो स्टार्टिंग से वहां पर रहना है। तो बाबा कहते हैं जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, 84 जन्म ही गिने जाते हैं, जो अच्छी रीति इम्तिहान पास करेंगे वह पहले पहले आएंगे। जो अच्छा पढ़ेंगे अच्छी रीति इम्तिहान पास करेंगे तो बाबा कहते हैं वह शुरू में पहले पहले आएंगे। जितना देरी से जाएंगे तो मकान पुराना तो कहेंगे ना, अब नया मकान बन जाता है 6 महीना 1 साल लगता है तो क्या कहेंगे, है नया मकान लेकिन 1 साल पुराना। गाड़ी ही लेते हैं उन्हें कहेंगे है नई गाड़ी लेकिन 2 साल चली है, उसका माइलेज देखते हैं। तो बाबा कहते कितना भी को जितना देरी से आएंगे थोड़ा तो पुराना होगा ना, जितना देरी से जाएंगे तो मकान पुराना तो कहेंगे ना, वह तो पुराने तो हो न सके, सोना तो सदैव चमकता ही रहेगा। बाबा कहते वहां पर सतयुग के अंदर जो महल है वो सोने के होंगे, वो सदा चमकता ही रहता है। फिर बाबा ने कहा फिर भी उसको साफ तो करना पड़ता है, आज भी गोल्ड को देखो, गोल्ड है गोल्ड लेकिन उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा मैलापन कालापन आने लगता है तो उसकी सफाई करते ना। तो बाबा कहते वो भी तो सफाई करनी पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं नया मकान बनता है तो दिन प्रतिदिन आयु भी कम होती जाएगी, वहां तो सोने के महल बनते हैं, वह तो पुराने हो न सके, सोना तो सदैव चमकता ही होगा, फिर भी साफ जरूर करना पड़े। महल बनेंगे, हीरे जवाहरात लगे होंगे, सफाई तो करेंगे ना, बिना सफाई थोड़ी रहेंगे। मकान में भी सफाई होगी, मकान में से नहीं, महलों में सफाई होगी, बाहर भी सफाई करेंगे, अंदर भी रहेंगे। तो मामा कहते हैं फिर भी साफ जरूर करना पड़े, जेवर भल पक्के सोने के बनाओ तो भी आंखें चमक कम होती जाएगी। वहां तो सोने के महल बनते हैं, फिर भी साफ जरूर करना पड़े। तो बाबा कहते फिर उनको पॉलिश चाहिए। तुम बच्चों को सदैव खुशी रहना चाहिए कि हम नई दुनिया में जाते हैं, इस नरक में ये अंतिम जन्म है। इन आंखों से जो देखते हो जानते हैं ये पुरानी दुनिया पुराना शरीर है। बाबा बता रहे हैं दुनिया भी कैसी है, शरीर भी पुराना है। अभी हमको सत्युग नई दुनिया में नया शरीर लेना, यहाँ पुराना शरीर है, तमो प्रधान है, क्या क्या होते हैं, अचानक बैठे बैठे कुछ कुछ हो जाता है, पता भी नहीं रहता है, क्योंकि तमो प्रधान है, तत्व भी तमो प्रधान है। तो बाबा के जो बच्चों को नशा रहे कि हम नई दुनिया में जा रहे हैं, वहां पर नया शरीर लेंगे। अभी हमको सत्युग नई दुनिया में नया शरीर लेना है, पांच तत्व भी नए हैं, ऐसे विचार सागर मंथन चलना चाहिए। साकार बाबा का कितना विचार सागर मंथन चलता था। बाबा क्या करते थे, श्री कृष्ण के चित्र के सामने बैठ जाते थे। बाबा कहते अच्छा मैं ऐसा बनूंगा, मैं इतना मिच्छन बनूंगा। दादियां सुनाती हैं कि बाबा कैसे श्री कृष्ण को देख करके कितना अंदर में खुशी रहती थी। फिर कभी कभी लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने बाबा बैठते थे, फिर उस चित्र को देखते हुए बाबा क्या करते थे कि मुझे ऐसा संपन्न बन। दो प्रकार का पुरुषार्थ, श्री कृष्ण के चित्र को देख करके बहुत खुश, और लक्ष्मी नारायण के चित्र को देख करके बाबा अपने पुरुषार्थ को कंपेयर करते थे कि मैं अगर ऐसा नहीं करूंगा तो ऐसी परफेक्ट स्टेज को प्राप्त नहीं कर सकता। तो बाबा का कहने का भाव ये है कि चित्र भी देखो तो अपने पुरुषार्थ को भी वैसा बनाने के लिए, अपने साथ वैसा ही पुरुषार्थ करने के लिए विचार सागर मंथन करना है। तो बाबा कहते हैं ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए, ये पढ़ाई है ना, अंत तक तुम्हारी ये पढ़ाई चलेगी। पढ़ाई बंद हुई तो विनाश हो जाएगा। अभी क्यों नहीं परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि बच्चे संपन्न नहीं बने। तो बाबा कहते पढ़ाई पूरी हुई तो विनाश हो जाएगा, तो अपने को स्टूडेंट समझ इस खुशी में रहना चाहिए। कौन सी बात, कि भगवान हमको पढ़ाते। कौन सी खुशी, कि हम भगवान के स्टूडेंट हैं। अपने को स्टूडेंट समझ इस खुशी में रहना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। ये खुशी कोई कम थोड़ी है, ये खुशी कम है कि बाबा हमको पढ़ाते हैं, बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं, ये खुशी कोई कम थोड़ी है। परंतु साथ साथ माया भी उल्टा काम करा देती है। पांच छह वर्ष पवित्र रहते फिर माया गिरा देती है, एक बार गिरे तो फिर वह अवस्था हो ना सके। एक बार गिर गए, कितनी भी अपना पुरुषार्थ करें, कितना भी ऊंचा चले जाए, लेकिन बीच का जो टूटा है वो तो निशान पड़ जाता है। इसलिए बाबा कहते एक बार गिरे तो फिर वह अवस्था हो न सके। हम गिरे हैं, उनको अपने आप से घृणा आती, दूसरा कोई बोले या ना बोले, हम गिरे हैं तो घृणा आती है। अभी तुम बच्चों को सारी स्मृति रखनी है, इस जन्म में जो पाप किए हैं, हर एक आत्मा को अपने जीवन का तो पता है ना, कोई मंद बुद्धि पता है ना, कोई मंद बुद्धि कोई विशाल बुद्धि होते हैं। छोटेपन की हिस्ट्री तो याद रहती है। बाबा के पास जब बच्चे आते थे ना, बाबा सबको कहते थे कि आप अपने बचपन बाल्यकाल से लेकर के क्या क्या भूले की लिख करके दो। कई कहते थे बाबा हमको तो याद ही नहीं है। बाबा की थी मंद बुद्धि है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो पांच साल से या छह, आज तो बाबा ने छह साल बोला है, पांच साल से शुरू होता है ना, तो बच्चों को याद रहता है हम क्या करते थे, क्या शरारत करते थे, हम ऐसे करते थे, हम वैसे करते थे। तो अभी बाबा भी वही बता रहे हैं, कोई विशाल बुद्धि होते हैं, छोटेपन की हिस्ट्री तो याद रहती है ना, ये बाबा भी छोटेपन की हिस्ट्री सुनाते। आशी बाबा कह रहे हैं ये ब्रह्मा बाबा बहुत सुनाते थे, मैं क्या करता था, गांव का छोड़ा था, बिना चप्पल पहने ऐसे घूमता था, खेलते थे। वो बाबा भी अपनी हिस्ट्री सुनाते ना, तो बाबा कहते हैं ये बाबा भी छोटेपन की हिस्ट्री सुनाते हैं ना। बाबा को मकान आदि याद है ना, जितने यहाँ बैठे सबको अपने छोटेपन की हिस्ट्री याद है ना कि नहीं, सबको याद रहती है हम कहाँ रहते थे, क्या था, हम क्या करते थे। और बच्चे जो शरारती थे उनको पता है कि हमने क्या क्या किया है। तो बाबा जब भी कोई बच्चे आते थे ना, तो बाबा हमेशा कहते थे छोटेपन से लेकर के अभी तक जो भी हुआ है वो लिख करके बाबा को दो। तो बाबा भी, ब्रह्मा बाबा भी बता रहे हैं कि वो मकान आदि सब याद है। फिर बाबा के तब तो मकान भी बदली हो गया होगा, जिसकी जगह जो मकान थे वही थोड़ी रहते, चेंज हो जाता है ना। तो बाबा कहते हैं छोटेपन की हिस्ट्री तो याद रहती है, ये बाबा भी छोटेपन की हिस्ट्री सुनाते हैं ना। बाबा को वो मकान आदि भी याद है, परंतु अभी तो वह सब नए मकान बन गए होंगे। अब उस मकान को देखने जाओ, बीच में जहाँ कुंज भवन था, जहाँ कराची में था, वहां स्थान पर कई एक दो भाई बहने गए, और भाई बहने मीन्स विदेश वाले गए, वो स्थान ही पूरा बदला हुआ है। तो बाबा कहते तो स्थान तो बदल जाएगा ना, वही कच्चा मकान पुराना मकान तो नहीं रहेगा ना। तो बाबा कहते हैं अब तो सब नए मकान बन गए होंगे, 6 वर्ष से लेकर अपनी जीवन कहानी याद रहती। बाबा ने 1 वर्ष की और मार्जिन दे दी, नॉर्मली 5 वर्ष से याद रहता है। तो आज बाबा क्या कह रहे हैं, 6 वर्ष से लेकर अपनी जीवन कहानी याद रहती। अगर भूल गया हो कोई कि हमें याद ही नहीं है, तो बाबा क्या कहते, डल बुद्धि है। कोई ऐसा भूल गया हो, सबको याद है ना, याद है कि नहीं सबको, जिनको नहीं है हाथ खड़ा करें, सबको याद है। तो बाबा कहते अगर कोई कहता हमको तो भूल गया, हमको पता ही नहीं है, अगर कोई भूल गया है तो डल बुद्धि कहेंगे। बाप कहते हैं अपनी जीवन कहानी लिखो, शुरू में सब लिख करके देते थे। बाप कहते अपनी जीवन कहानी लिखो, लाइफ की बात है ना, मालूम पड़ता है कि लाइफ में कितने चमत्कार थे। अब बाबा ये नहीं कहे कि भूले कि है वो सब, लाइफ के अंदर कितनी अचीवमेंट थी, कितने चमत्कार थे, तो वो भी मालूम पड़ता है। लाइफ में कितने चमत्कार थे, गांधी नेहरू आदि के कितने बड़े बड़े वॉल्यूम्स बनाते, कितनी बड़ी बड़ी पुस्तकें होती हैं, किताबें होती हैं, गांधी नेहरू आदि के कितने बड़े बड़े वॉल्यूम्स बनाते हैं। लाइफ तो वास्तव में तुम्हारी है, बहुत वैल्यू। अब उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन उनकी भेंट में बाबा कहते हैं तुम्हारी लाइफ बहुत ही वैल्यूएबल है। वंडरफुल लाइफ ये है मोस्ट वैल्यूएबल, अमूल्य जीवन। और आज बाबा पक्का करा रहे हैं हमारा जीवन मोस्ट वैल्यूएबल, अमूल्य जीवन। इसलिए कोई भी इधर उधर की संकल्पों में अपने मन को नहीं भटकाना है। तो बाबा कहते इस समय तुम्हारी लाइफ ये है मोस्ट वैल्यूएबल, अमूल्य जीवन। इनका मूल्य कथन किया नहीं जा सकता, कितनी बड़ी बात। ब्राह्मण लाइफ की वैल्यू इतनी है, उसका कोई भी मूल्य कोई नहीं कर सकता है। ये तो हम बच्चों को भी इसका ध्यान रखना, अपनी लाइफ के लिए और दूसरों के लिए, इसका मूल्य कथन किया नहीं जा सकता। इस समय तुम ही सर्विस पर हो, ये लक्ष्मी नारायण कुछ भी सर्विस नहीं करते। अब क्या करेंगे, विश्व महाराजा महारानी बन गए, आराम से रहो, खाओ पियो, प्रजा चल रही है, सब चल रहा है, सर्विस कौन करते हैं, यहाँ ही करते फिर जाके बनते हैं। तो बाबा कहते इस समय तुम ही सर्विस करते हो, ये लक्ष्मी नारायण कुछ भी सर्विस नहीं करते। तुम्हारी लाइफ बहुत वैल्यूएबल है, जबकि औरों को भी ऐसा जीवन बनाने की सेवा करते हो। जो अच्छी सर्विस करते हैं वह गायन लायक, बाहर वाले भी उनका गायन करते हैं, बाबा भी करता है और ब्राह्मण भी उनका बहुत प्यार करते हैं। तो बाबा कहते हैं जो अच्छी सर्विस करते हैं वह गाय लायक होते हैं। वैष्णो देवी का मंदिर भी है ना, अभी तुम सच्चे सच्चे वैष्णव बनते हो। वैष्णव माना जो पवित्र है। अब उस देवी का मंदिर है, वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए जाते हैं और कितना कठिनाई से जाते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं, नीचे घिसा घिसा करके जाते हैं। बाबा कहते वास्तव में सच्चे वैष्णव कौन है, तुम बच्चे ही सच्चे वैष्णव हो। अभी तुम्हारा खान पान भी वैष्णव है। ब्राह्मणों का खान पान शुद्ध होता है, कोई ऐसा वैसा भोजन नहीं करते हैं। तो बाबा बताते हैं अब तुम्हारा खान पान भी वैष्णव है, पहले नंबर के विकार में भी तुम वैष्णव। दुनिया वाले तो विकारों में जाते रहते हैं, खान पान पे थोड़ा ध्यान देते, कभी दिया कभी ना दिया। तो बाबा कहते हैं पहले नंबर के विकार में तो तुम वैष्णव अर्थात पवित्र हो ही। अब बाबा क्या बता रहे हैं, पवित्र हो ही मीन्स बुद्धि इधर उधर नहीं जाती है। पहले नंबर के विकार में तुम हो वैष्णव अर्थात पवित्र हो ही। जगत अम्मा के ये सब बच्चे ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमार। वैष्णो देवी में दिखाते ना जगत अम्बा है, तो बाबा बता रहे हैं कि तुम सब बच्चे जगत अम्बा के हो, बच्चे हो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। जगत अम्बा के ये सब बच्चे ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां। ब्रह्मा और सरस्वती बाकी बच्चे हैं, उनकी संतान नंबरवार देवियां भी हैं जिनकी पूजा होती है। बाकी इतनी भुजाएं आदि दे दी हैं, वे सब हैं फालतू। अब इतनी भुजाएं दे दी वो तो केवल दर्शन मात्र, लेकिन इतनी भुजाओं से तो कोई काम ही नहीं कर सकता। किसकी दो भुजा भी एक्स्ट्रा हो जाए तो क्या होगा, उनको कहेंगे नहीं नहीं इसको निकलवा दो, ये एक शरीर का भी अलग प्रकार का है। तो इस तरह से बाबा कहते ये देवियां आदि जो दी है ये सब क्या है, फालतू बातें हैं। देवियों को जो इतनी भुजाएं दी हैं, नंबरवार देवियां भी हैं जिनकी पूजा होती है, बाकी इतनी भुजाएं आदि दी हैं वह सब हैं फालतू। तुम बच्चों को आप समान बनाते हो तो भुजाएं दे दे। क्यों भुजाएं दी हैं, क्योंकि तुम बच्चे ही बाबा के कार्य में औरों को आप समान बनाते हो और सेवा करते हो, इसलिए बाबा कहते ये भुजाएं दे दी हैं। तुम बहुतों को आप समान बनाते हो तो ये भुजाएं दे दी हैं। ब्रह्मा को भी 100 भुजा वाला 1000 भुजा वाला दिखा दे। भक्ति मार्ग में भी दिखाते ना ब्रह्मा को 100 भुजा 1000 भुजा वाला दिखाते हैं, ब्रह्मा को भी 100 भुजा वाला 1000 भुजा वाला दिखाते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। तुमको फिर बाप कहते हैं दैवी गुण भी धारण करने हैं, किसको भी दुख ना दो। लास्ट में बाबा क्या बता रहे हैं, तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं, किसको भी दुख ना दो। तीसरा, किसको उल्टा सुल्टा रास्ता बताएं सत्यानाश ना कर। उल्टी मत दे देते हैं, तुम ऐसे करो देखो कैसे नहीं सुनते, तुम करके तो देखो तुम्हारी सब बातें सुनेंगे, तुम्हारा ही होगा, पता नहीं क्या क्या उनको सुनाते रहते हैं। वो व्यक्ति ना इधर का रहता है ना अपनी स्थिति बना सकता है, ना बनाने में उसको हिम्मत रहती है। तो इसलिए बाबा कहते उनको प्यार देते रहो, तो उल्टी सुलटी बातें नहीं सुनाओ। तो बाबा कहते किसको भी दुख ना दो, किसको उल्टा सुलटा रास्ता बताए सत्यानाश ना करो। एक ही मुख्य बात समझानी चाहिए कि बाप और वर्षे को याद करो। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है गायन व पूजने योग्य बनने के लिए पक्का वैष्णव बनना है। गायन व पूजने योग्य बनने के लिए पक्का वैष्णव बनना है। खान पान की शुद्धि के साथ साथ पवित्र रहना है। इस वैल्यूएबल जीवन में सर्विस कर बहुतों का जीवन श्रेष्ठ बनाना है। दूसरा, बाप के साथ ऐसा योग रखना है जो आत्मा की लाइट बढ़ती जाए। बाप के साथ ऐसा योग रखना है जो आत्मा की लाइट बढ़ती जाए। कोई भी विकर्म कर लाइट कम नहीं करना है। बाबा पक्का कराते, कोई भी विकर्म कर लाइट कम नहीं करना है। अपने साथ मित्रता रखनी है। मर्दान, सुस्थिति की सीट पर स्थित रहे परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचयिता भव। सुस्थिति की सीट पर स्थित रहे परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचयिता भव। कोई भी परिस्थिति व प्रकृति द्वारा आती है, इसलिए परिस्थिति है रचना। कोई भी परिस्थिति आती है, कैसी भी आती है, कोई भी परिस्थिति प्रकृति द्वारा आती है, इसलिए परिस्थिति रचना है। और स्वस्थिति वाला रचयिता, अब रचयिता कौन है? स्वस्थिति वाला। और स्वस्थिति वाला रचयिता है मास्टर रचयिता व मास्टर सर्वशक्तिवान। कभी हार खा नहीं सकते, असंभव है। मास्टर रचयिता कभी हार खा नहीं सकते, बाबा कहते ये असंभव है। अगर कोई अपनी सीट छोड़ते हैं तो हार होती है। सीट छोड़ना अर्थात शक्तिहीन बनना। सीट के आधार पर शक्तियां स्वतः आती हैं। जो सीट से नीचे आ जाते उन्हें माया की धूल लग जाती है। कोई ऊपर से नीचे आएगा, नीचे तो गंदगी होती है ना, तो बाबा कहते हैं जो सीट से नीचे आ जाते उन्हें माया की धूल लग जाती है। बाप दादा के लाडले मर जीवा जन्मधारी ब्राह्मण कभी भी देह अभिमान की मिट्टी में खेल नहीं सकते। कितनी बड़ी बात, बाप दादा के लाडले मर जीवा जन्मधारी ब्राह्मण कभी भी देह अभिमान की मिट्टी में खेल नहीं सकते। स्लोगन, दृढ़ता कड़े संस्कारों को भी मौन की तरह पिघला अथवा खत्म कर देती है। दृढ़ता कड़े संस्कारों को भी मौन की तरह पिघला अथवा खत्म कर देती है। आज का व्यक्ति इशारा और इस मास का जो टाइटल चल रहा है, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जैसे ज्ञान स्वरूप हो तो ऐसे स्नेह स्वरूप बनो। जैसे ज्ञान स्वरूप हो ऐसे सदा स्नेह स्वरूप बनो। ज्ञान और स्नेह दोनों कंबाइंड हो, क्योंकि ज्ञान बीज है और स्नेह पानी है। अगर बीज को पानी नहीं मिलेगा तो फल नहीं देगा। ज्ञान के साथ दिल का स्नेह है तो प्राप्ति का फल मिलेगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी फॉरनर सीजन का, तो इस वर्ष के फॉरनर सीजन का समय नजदीक। सभी डबल विदेशी भाई बहने अपने अपने स्थानों पर जा रहे हैं और बाकी तो फिर से इंडियन सीजन भी शुरू होने वाली है। पहले एनुअल सर्विस मीटिंग है, उसके बाद भी भारतीय भाई बहनों की जो सीजन होगी उसका प्रोग्राम क्या होगा वो तो बाद में मालूम पड़ ही जाएगा। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठते हैं। अच्छा, जो भाई बहने एक रात के लिए, अभी शांति मन से हाथ खड़ा करें। जो भाई बहने एक रात या अभी शांति मन से आए हैं तो आपको बता दें कि सभी के लिए नाश्ता दोपहर का भोजन ऊपर के बड़े डाइनिंग हॉल में होता है, क्योंकि नीचे बैठने का स्थान नहीं है, इसलिए सबको ध्यान देना है नाश्ता भोजन रात का खाना ऊपर के बड़े डाइनिंग हॉल में ही करना है, नीचे स्थान नहीं है, कुछ कारोबार चलता है ना, तो इस बात का भी ध्यान देना है। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे। After that, all the double foreign sisters and brothers will stay back. I will announce.